नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमरीका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।